नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 थी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की उपधारा 2 के अनुसार हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है, वो अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके। कई विस्तार के बाद सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि के रूप में 30 जून 2023 को अधिसूचित किया। 1 जुलाई 2023 से जो करदाता अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि ₹1000 के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमैटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत जोमैटो के डिलीवरी साझेदारों को वे दोनों कंपनियां किफायती ऋण और बैटरी अदला बदली की सेवा देंगी। गोगोरो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होरास लियुक ने एक बयान में कहा, भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक परिवहनों का शहरी रूपांतरण शुरू हो गया है। ऐसे में आवश्यक है कि हम डिलीवरी साझेदारों को इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों से जुड़ी सुविधाएं दें। गोगोरो, जोमैटो और कोटेक ने इसलिए ये साझेदारी की है। जोमैटो में फूड डिलीवरी के मुख्य परिचालन अधिकारी मोहित सरदाना ने कहा, किफायती और भरोसेमंद बैटरी अदला बदली समाधान के साथ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन डिलीवरी साझेदारों के लिए लाभदायक साबित होते हैं और इनसे वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को परिसंपत्तियों का सृजन करने और जनता के धन की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। यहां यूको बैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस संतुलन के गड़बड़ाने से समस्या खड़ी हो जाएगी जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। मुर्मू ने देश के 18 राज्यों में यूको बैंक की 50 शाखाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, बैंकों की पहली जिम्मेदारी जनता के धन की रक्षा करना है, उनका दूसरा अहम पहलू है परिसंपत्तियों का सृजन करना। इस संतुलन को कायम रखना जरूरी है, अन्यथा आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। कोविड के दौरान वित्तीय प्रौद्योगिकी ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना करते हुए मुर्मू ने कहा, फिनटेक ने सामाजिक समानता लाने में मदद दी। UPI देश में बुनियादी डिजिटल ढांचा बनाने में, महामारी के दौरान लेन देन निपटाने में मददगार रहा है। शेयर बाजार NSE और BSE ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी को मंगलवार 28 मार्च से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम के दूसरे चरण के दायरे में रखा जाएगा। शेयर बाजारों के परिपत्रों में ये जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ASM रूपरेखा के दायरे में बनी रहेगी, लेकिन 28 मार्च से इसे संबंधित उच्च चरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे पहले NSE और BSE ने अडानी समूह की दो कंपनियों अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन को दीर्घकालिक SSM के दूसरे चरण से हटाकर शुक्रवार को पहले चरण में रख दिया था। इससे पहले 17 मार्च को दोनों शेयर बाजारों ने अडानी ग्रीन एनर्जी और NDTV को दीर्घकालिक ASM के पहले चरण में रखा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मंगलवार को अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि पर 2022-23 के लिए ब्याज दर मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15% करने का निर्णय लिया। EPFO अपने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के EPF पर 2021-22 के लिए ब्याज दर को घटाकर मार्च 2022 में 4 दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.10% पर ले आया था। ये दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी। तब EPF पर ब्याज दर 8% हुआ करती थी। 2020-21 में ये दर 8.5% थी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय एवं केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2022-23 के लिए सदस्यों के EPF जमा पर वार्षिक 8.15% की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष में घरों की कीमतें 8-10% तक बढ़ी हैं और 2023-24 के दौरान इनमें और 5% की वृद्धि हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को यह अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने 2023-24 के लिए आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के परिदृश्य को संशोधित करते हुए सुधार से बदलकर तटस्थ कर दिया। उसने एक बयान में कहा, ऊंची निर्माण लागत, बढ़ती आवास ऋण दरें और घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद आवासीय रियल एस्टेट बाजार में 2022-23 में तेजी बरकरार रही है। इसमें कहा गया कि मंदी और मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से निकट भविष्य में मांग कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि बाजार दबाव को झेल लेगा। एजेंसी ने कहा कि मांग में वृद्धि भी हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा, 2022-23 में सालाना आधार पर संपत्ति के दामों में 8-10% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में इसमें और 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। उसने कहा कि 2021-22 में आवास बिक्री के पीछे मुख्य वजह इनके कम दाम रहे हैं। हालांकि मुद्रास्फीति बढ़ने और रैपो दरों में वृद्धि से किफ़ायती श्रेणी के घरों में मांग 2022-23 में कुछ प्रभावित हुई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।